एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, आज हम सब एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, रॉबर्ट आइगर की द राइड ऑफ अ लाइफटाइम। ये लीडरशिप और बिजनेस की दुनिया में आप कह सकते हैं काफी चर्चित रही है।
जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, ये किताब सिर्फ किसी बड़े सीईओ की कहानी भर नहीं है। रॉबर्ट आइगर या बॉब आइगर जैसा उन्हें जानते हैं, उन्होंने डिज्नी जैसी विशाल कंपनी को 15 साल चलाया और उनके जो अनुभव है वो आज के दौर में मतलब बहुत ज्यादा प्रासंगिक है।
सही का, क्योंकि दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, खासकर टेक्नोलॉजी। तो ऐसे में एक लीडर कैसे मतलब इतनी बड़ी कंपनी को न सिर्फ संभालता है बल्कि उसे और मजबूत बनाता है, यही तो इस किताब का निचोड़ है और आज की चुनौती भी।
अमेरिका के मीडिया जगत का एक जाना माना नाम, 2005 से 2020 तक वो डिज्नी के सीईओ रहे। पर मजे की बात यह है कि उनकी शुरुआत बहुत ही कह सकते हैं जमीनी स्तर से हुई थी,
है ना? कमाल की बात है। सोचिए, 1974 में एबीसी मतलब अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, वहां सिर्फ $150 हफ्ते की तनख्वाह पर स्टूडियो सुपरवाइजर का काम, और वहां से उठकर 45 साल के करियर में डिज्नी के टॉप तक पहुंचना, ये सफर ही अपने आप में एक कहानी है।
और उनकी खासियत क्या मानी जाती है? शायद वो कॉम्बिनेशन है ना, मतलब क्रिएटिविटी की समझ भी और बिजनेस का तेज दिमाग भी।
जी हाँ, बिल्कुल। वो सिर्फ नंबर वाले सीईओ नहीं थे, उन्होंने स्टीव जॉब्स, जॉर्ज लूकस ऐसे क्रिएटिव दिग्गजों के साथ काम किया, उनका भरोसा जीता। तो जब वो लीडरशिप की बात करते हैं तो वो किताबी बातें नहीं होती, वो असल जिंदगी के मुश्किल हालात में सीखे गए सबक होते हैं।
पर एक गाइड बुक भी कह सकते हैं। आइगर अपनी जीत, अपनी हार, अपनी गलतियां सब कुछ खोलकर बताते हैं, और साथ में वो सिद्धांत भी जिन पर वो चले।
और किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो बहुत सीधा लेकिन गहरा है कि भाई, सफल लीडरशिप कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कुछ बुनियादी इंसानी उसूलों पर टिकी है। आशावाद मतलब पॉजिटिव रहना, साहस यानी हिम्मत, फोकस मतलब ध्यान बनाए रखना, और निर्णायकता यानी फैसले लेना, और ये सब ईमानदारी और लोगों के लिए सम्मान के साथ।
हाँ, ये किताब इस बड़े सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है कि डिज्नी जैसी इतनी पुरानी, इतनी बड़ी कंपनी को जो अपनी ही विरासत में फंस सकती थी, उसे आज के जबरदस्त बदलाव वाले दौर से कैसे निकाला, सिर्फ बचाना नहीं बल्कि पहले से भी ज्यादा ताकतवर कैसे बनाया।
और जैसे आपने कहा, वो कुछ छुपाते नहीं है, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं, कहां फैसले गलत हुए, कहां चुनौतियां आईं, कैसे मुश्किल लोगों से डील किया, ये सब बताते हैं। ये ईमानदारी शायद इसे खास बनाती है। कैसे पिक्सार, मार्वल को डिज्नी में लाए, स्टीव जॉब से कैसे रिश्ते सुधारे, स्ट्रीमिंग के चैलेंज को कैसे फेस किया, डिज्नी प्लस कैसे बनाया, ये सब है इसमें।
किताब को अगर हम बांटें तो मोटे तौर पर दो हिस्से हैं। पहला है सीखना, मतलब उनके शुरुआती दिन, करियर में ऊपर चढ़ना, और दूसरा नेतृत्व करना जब वो डिज्नी के बॉस बने। तो चलिए उनके सफर के कुछ अहम पड़ावों और सबकों पर थोड़ी बात करते हैं।
हाँ बिल्कुल। तो पहला हिस्सा सीखना, लर्निंग। आइगर बताते हैं एबीसी में अपने शुरुआती दिनों के बारे में। सबक क्या था? बस अपना काम करो, मेहनत से करो, टाइम पर आओ, और हर काम में सीखने की कोशिश करो। वहां उन्हें रूनी अर्लिच जैसे एक बुढ़े टीवी प्रोड्यूसर के साथ काम करने का मौका मिला। उनसे सीखा उत्कृष्टता की निरंतर खोज, मतलब एवरेज से कभी संतुष्ट मत हो, हमेशा बेस्ट करने की सोचो। ये बात उनके साथ हमेशा रही।
फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़े, मैनेजमेंट में आए, तो एक और अहम बात सीखी, ये मानना कि आपको सब कुछ नहीं आता। अपनी कमियां पहचानो और फिर ऐसी टीम बनाओ जो उन कमियों को पूरा करे, मतलब ऐसे लोग लाओ जो आपसे बेहतर जानते हो कुछ चीजों में।
हाँ, और वो कहते हैं कि असली अथॉरिटी पोस्ट से नहीं आती, वो नॉलेज से और दूसरों को सुनने की इच्छा से आती है। ये बहुत जरूरी सबक है।
बिल्कुल। फिर उनके करियर में एक बड़ा मोड़ आया जब एबीसी का मर्जर कैपिटल सिटीज नाम की कंपनी से हुआ। यहाँ उन्हें टॉम मर्फी और डैन बर्ग जैसे मेंटोर मिले।
जी, और उनसे उन्होंने लीडरशिप का एक अलग ही स्टाइल सीखा, विनम्रता, ईमानदारी और लोगों का सम्मान। उनका सीधा सा फंडा था, अच्छे लोगों को रखो और उन्हें अपना काम करने दो, ज्यादा टोका टाकी नहीं, भरोसा ज्यादा। ये आइगर के लिए आप कह सकती हैं एक तरह से मूल मंत्र बन गया।
बिल्कुल। दिलचस्प बात यह है कि इसके बाद डिज्नी ने कैपिटल सिटीज एबीसी को खरीद लिया, तो आइगर अब डिज्नी में आ गए, माइकल आइजनर के अंडर। आइजनर उस वक्त सीईओ थे।
हाँ, और आइगर आइजनर की क्रिएटिविटी की तो तारीफ करते हैं, लेकिन उनके काम करने के तरीके से काफी परेशान थे। वो माइक्रो मैनेजमेंट बहुत करते थे, मतलब हर छोटी बात में दखल देना, और उनका नजरिया भी काफी निराशावादी था।
तो आइगर ने उनसे सीखा कि कैसा लीडर नहीं बनना है, है ना? कभी कभी दूसरों की गलतियों से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं।
बिल्कुल सही। और फिर आता है दूसरा हिस्सा, नेतृत्व करना, लीडिंग। 2005 में काफी उठापटक के बाद आइगर डिज्नी के सीईओ बने। आते ही उन्होंने तीन बिल्कुल साफ रणनीतिक लक्ष्य तय किए। डिज्नी के तीन स्तंभ वो इन्हें कहते थे।
हाँ, वो क्या थे?
पहला, बेहतरीन ब्रांडेड कंटेंट बनाना। दूसरा, टेक्नोलॉजी को पूरी तरह अपनाना, उससे डरना नहीं। और तीसरा, डिज्नी को सचमुच एक ग्लोबल कंपनी बनाना। उनके पूरे 15 साल के कार्यकाल को देखें तो डिज्नी के ज्यादातर बड़े काम इन्हीं तीन लक्ष्यों के आसपास घूमते हैं।
सीईओ बनने के बाद उनका पहला बड़ा कदम था पिक्सार का अधिग्रहण। ये काफी हिम्मत वाला फैसला माना जाता है, क्यों?
हाँ, बहुत हिम्मत वाला, क्योंकि पिक्सार के सीईओ थे स्टीव जॉब्स, और डिज्नी के साथ उनके रिश्ते वो बहुत खराब थे उस वक्त। जॉब्स को डिज्नी पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। आइगर ने पहले वो भरोसा कायम किया, आपसी सम्मान का रिश्ता बनाया। उन्होंने ये भी माना कि डिज्नी एनिमेशन को पिक्सार की जरूरत है, ये उनकी विनम्रता थी।
और फिर वो $7.4 बिलियन की डील।
जी, वो उनका साहस था। ये सिर्फ एक कंपनी खरीदना नहीं था, ये डिज्नी की क्रिएटिव आत्मा को, कह सकते हैं, फिर से जगाना था।
इसके बाद मार्वल, वहां भी अंदर से काफी विरोध था शायद, कि ये सुपर हीरो वगैरह डिज्नी के ब्रांड से मैच नहीं करते।
हाँ, बिल्कुल था। लेकिन आइगर ने भविष्य देखा। उन्होंने समझा कि इन किरदारों में, इन कहानियों में कितना दम है। उन्होंने 4 बिलियन का वो सौदा किया। यहां उनका वो सिद्धांत काम आया, नयापन लाओ या मरो, मतलब बदलो या खत्म हो जाओ।
फिर लूकस फिल्म यानी स्टार वॉर्स। यहाँ पैसे से ज्यादा भरोसे का सवाल था, है ना? जॉर्ज लूकस अपनी विरासत सौंप रहे थे।
बिल्कुल, आइगर को लूकस को यकीन दिलाना पड़ा कि डिज्नी उनकी बनाई दुनिया का सम्मान करेगा, उसे सही हाथों से आगे बढ़ाएगा। ये 4.05 बिलियन की डील थी, लेकिन यह भरोसे और जिम्मेदारी पर टिकी थी। ये दिखाता है कि बड़े सौदे सिर्फ नंबर गेम नहीं होते, उनमें इंसानी पहलू बहुत अहम होता है।
और इन सब के बीच टेक्नोलॉजी की दुनिया बदल रही थी, नेटफ्लिक्स आ गया था।
हाँ, स्ट्रीमिंग एक बड़ी चुनौती बन रही थी। आइगर ने इसे खतरे की तरह नहीं देखा, बल्कि एक मौके की तरह। और फिर उन्होंने डिज्नी प्लस लॉन्च करने का वो बड़ा साहसिक फैसला लिया।
साहसिक क्यों?
आज के मुनाफे को कल के लिए दांव पर लगाया, ये होती है दूरदर्शिता।
और फिर इस सब की पराकाष्ठा थी वो 21st Century Fox वाली डील, स्ट्रीमिंग की रेस में आगे निकलने के लिए।
जी हाँ, $71.3 बिलियन रूपर्ट मॉडॉक के साथ, डिज्नी के इतिहास की सबसे बड़ी डील। ये आइगर की रणनीति और उनकी जोखिम लेने की क्षमता का मतलब चरम था।
किताब के आखिर में आइगर फिर से उन्हीं बुनियादी बातों पर लौटते हैं, ईमानदारी, सम्मान, लीडरशिप के मानवीय पहलू। वो उत्तराधिकारी यानी अगला लीडर चुनने की चुनौतियों पर भी बात करते हैं। तो ये थी उनकी राइड ऑफ ए लाइफटाइम की एक झलक।
इस पूरे सफर से, जैसा आपने कहा, कई अहम थीम निकल कर आते हैं। एक तो है आशावाद की ताकत। आइगर मानते हैं कि लीडर का काम है उम्मीद जगाए रखना, खासकर मुश्किल वक्त में। ये कोई झूठी दिलासा नहीं, बल्कि भरोसा कि हाँ, हम रास्ता निकाल लेंगे।
बिल्कुल, नेगेटिविटी फैलाकर आप टीम को आगे नहीं ले जा सकते। और इसी से जुड़ा है बड़े और सोचे समझे जोखिम लेने का साहस। आइगर का मानना था कि आज की दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क न लेना।
सही बात है, बदलाव तो होना ही है।
पिक्सार, मार्वल, लुकास फिल्म, फॉक्स, ये सब बड़े जोखिम थे, पर अंधेरे में तीर नहीं थे। इनके पीछे एक साफ सोच थी कि बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन आईपी ही भविष्य है।
तीसरा है फोकस। उत्ती गणनीतिक लक्ष्य याद हैं, उन्होंने आते ही तय कर दिए। पूरे कंपनी को दिशा मिल गई। 100 चीजें एक साथ करने की कोशिश से बेहतर है कुछ जरूरी चीजों पर पूरी ताकत लगाना।
और चौथा, जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है, वो है ईमानदारी और शालीनता। आप कैसे जीतते हैं ये भी मायने रखता है। लोगों के साथ संबंध से पेश आना, मुश्किल फैसलों में भी इंसानियत रखना, आइगर के लिए लीडर की इंटेग्रिटी, उसकी ईमानदारी सबसे बड़ा हथियार है। इससे भरोसा बनता है। हाँ, और इसी से जुड़ा है पांचवा पॉइंट, रिश्तों का महत्व। बिजनेस आखिर में है तो लोगों के बारे में ही है ना। चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, जॉर्ज लूकास हो, या आपके अपनी टीम के लोग। आइगर ने दिखाया कि अगर नियत साफ हो और आप सहानुभूति रखें तो मुश्किल रिश्ते भी सुधर सकते हैं, और वही रिश्ते बड़ी चीजें मुमकिन बनाते हैं।
छठा है उत्कृष्टता की निरंतर खोज। मतलब बस ठीक है से काम नहीं चलेगा, हमेशा बेहतर करने की कोशिश। पिक्सार को इसीलिए तो वो डिज्नी में लाए क्योंकि वो बेस्ट थे।
और सातवां, बदलाव और नई तकनीक को अपनाना। टेक्नोलॉजी से डरना नहीं, उसे समझना और उसका फायदा उठाना। डिज्नी प्लस इसका सबसे बड़ा सबूत है।
ये बातें भारत में भी कितनी लागू होती हैं सोचिए। यहाँ भी तो बिजनेस में भरोसे का बड़ा रोल है, और मुश्किल समय में टीम को मोटिवेटेड रखना, पॉजिटिव रखना, ये तो हर लीडर के लिए जरूरी है।
आइगर की किताब में कुछ लाइनें ऐसी हैं जो याद रह जाती हैं। कुछ पर बात करें?
हाँ, क्यों नहीं। एक तो वही, नयापन लाओ या मरो, बीच का कोई रास्ता नहीं है। मतलब लगातार बदलते रहो, बेहतर होते रहो, वरना पीछे रह जाओगे।
और ये भी बहुत पावरफुल है, आप निराशावाद फैलाकर लोगों को सफलता की तरफ नहीं ले जा सकते। लीडर की सोच, उसकी बातें पूरी टीम का माहौल तय करती हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है।
एक और दिलचस्प बात है, योग्यता को अनुभव से ज्यादा महत्व दें। लोगों को ऐसी भूमिकाएं दें जिनसे उन्हें विकसित होने की जरूरत हो। ये थोड़ा हटके है। अक्सर हम देखते हैं कि कितने साल का एक्सपीरियंस है, पर आइगर कहते हैं कि टैलेंट, सीखने की इच्छा, ये ज्यादा जरूरी हो सकती हैं। लोगों को मौका दो।
और ये लाइन तो मुझे बहुत पसंद आई, सच्ची सत्यनिष्ठा एक तरह का गुप्त हथियार है। मतलब ईमानदार होना कमजोरी नहीं, ताकत है। लंबे समय में यही काम आता है।
अंत में वो कहते हैं, आपके लोगों और आपके उत्पाद की गुणवत्ता और अखंडता से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। ये उनकी प्राथमिकताओं को दिखाता है, लोग और प्रोडक्ट क्वालिटी।
तो इन सब बातों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने काम में कैसे उतार सकते हैं?
देखिए, अगर कोई मैनेजर है तो क्या सीख सकता है? साफ लक्ष्य तय करना, अपनी टीम पर भरोसा करना, उन्हें स्पेस देना, माइक्रो मैनेज मत करो, और हाँ, मुश्किल वक्त में भी पॉजिटिव रहो।
और अगर कोई अपना बिजनेस शुरू कर रहा है, कोई उद्यमी है,
उसके लिए सबक है, लगातार खुद को और अपने आइडिया को चैलेंज करो, बदलाव से डरो मत, और जब किसी से डील करो तो सिर्फ नंबर मत देखो, रिश्ता बनाने पर फोकस करो, इंसान को समझो।
और जो लोग अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए?
उनके लिए सीधा सा संदेश है, जो भी काम हाथ में है उसे पूरी लगन से करो, हमेशा सीखते रहो, खोजागीर बने रहो, और सबसे जरूरी, अपनी रेप्यूटेशन ईमानदारी और मेहनत पर बनाओ, यही आपकी असली पूंजी है।
संकट के समय में, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, आइगर की बातें काम आ सकती हैं। पारदर्शिता मतलब सच बोलना, निर्णायकता मतलब फैसला लेना, और अपने मूल्यों पर टिके रहना।
तो कुल मिलाकर इस किताब से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो यही है कि महान लीडरशिप कोई बहुत जटिल चीज नहीं है, वो बुनियादी इंसानी मूल्यों पर आधारित है, उम्मीद, हिम्मत, ईमानदारी, फोकस और लोगों का सम्मान।
हाँ, आइका की कहानी ही यही दिखाती है कि कैसे एक साफ विजन, बड़े रिस्क लेने की हिम्मत और सबसे जरूरी, लोगों के साथ सही व्यवहार करके आप सचमुच कमाल कर सकते हैं। लीडरशिप का मतलब है एक ऐसा माहौल बनाना जहां सब अपना बेस्ट दे सके।
मुझे जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है उनका वो साहस। डिज्नी जैसी इतनी बड़ी स्थापित कंपनी को भविष्य के लिए पूरी तरह बदलने का जोखिम उठाना, ये पहचानना कि कल क्या होने वाला है और उसके लिए आज सब कुछ दांव पर लगा देना, यह आसान नहीं होता।
और मेरे लिए वो स्टीव जॉब्स वाला किस्सा, एक ऐसे इंसान का भरोसा जीतना जो मुश्किल माना जाता था, और फिर पिक्सार जैसी डील करना, ये दिखाता है कि रिश्तों में कितनी ताकत होती है। बिजनेस सिर्फ दिमाग का गेल नहीं है, दिल का भी है।
बिल्कुल, आखिर में ये किताब यही साबित करती है कि उसूलों पर चलने वाली लीडरशिप सिर्फ नैतिक रूप से सही नहीं है, बल्कि बिजनेस में लंबे समय तक सफल होने का सबसे असरदार तरीका भी है। आप अच्छे इंसान रहकर भी, बल्कि शायद इसीलिए कामयाब हो सकते हैं।
ये सोचने वाली बातें हैं ना।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।